الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليكل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري ومسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم میرے محترم دوستو بزرگوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درس ریاض الصالحین میں باب قائم کیا باب وجوب صوم رمضان و بیان فضل الصیام وما یتعلق بھی رمضان کے روزے کے فرض ہونے اور اس کی فضیلت کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں پہلے قرآن کی ایک آیت لائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پھر اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہر انسان کو دنیا میں اس فانی دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے پیدا نہیں کیا انسان کو اور جنات کو مگر میری عبادت کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس فانی دنیا میں چند دین کا مہمان ہے اپنی مہلت اپنی مدت اپنا ٹائم اپنی زندگی مکمل ہونے کے بعد یہ اگلے سفر کے اندر میں روانہ ہوگا اور وہ ہے عالم برزخ دنیا سے سفر کر کے اگلے سفر میں عالم برزخ میں جائے گا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی زندگی اپنا ٹائم اپنا قیمتی وقت اللہ کی یاد کے اندر میں گزار دیں اللہ کے احکام کی فرما برداری میں گزار دیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے جس کو ہر وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فکر ہو جس کی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے मुताबिक हो जिसका हर काम शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो, ऐसा इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। कामयाबी दुनिया की और आखिरत की अल्लाह ने बयान फरमाई है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दुनिया में तो कामयाबी का मतलब वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारेगा, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी वउदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि वो कामयाब हो गया, उसकी ज़िंदगी सबसे बेहतर ज़िंदगी गुजरी, क्योंकि अब तो कोई एंड नहीं है, अबदुल आबाद ज़िंदगी है, जन्नत की, जहन्नम की, अल्लाह पाक ने इसको जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर उसको पहुंचा दिया, गोया ये कामयाब इंसान है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमजान की आमद आमद, रमजान का महीना आ रहा है, 15 शाबान गुजर गई, हजरत फरमाते हैं जैसे सूरज तुलू होने से पहले, सूरज जब सनराइज होता है उससे पहले कुछ सफेदी शुरू हो जाती है, बिफोर सनराइज वी कैन सी अ वाइट लाइट, अ वाइटनेस, हमें ऐसा लगता है कि सूरज निकल गया, लेकिन सूरज निकला नहीं, अभी निकलने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले सफेद वाइट लाइट की तरह रोशनी फैल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती रहती है, यहां तक कि पूरा सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले ऐसा लगता है जैसे सूरज निकल आया हो। बहुत सी मरतबा आदमी परेशान होता है, यार सूरज निकल गया क्या, लेकिन सूरज अभी निकला नहीं, 2-3 मिनट बाकी है और रोशनी फैल गई। आप सुबह देखना जो लोग उठते हैं इशराक के लिए, फजर की नमाज के लिए, और बैठते हैं अल्लाह के जिक्र में और इंतजार में रहते हैं कब सूरज निकले, वो कभी सूरज देखता है कभी घड़ी देखता है, लगता है सूरज निकल गया, अभी अभी इधर तो टाइम बाकी है, तो उस वक्त पता चलता है कि अभी सूरज निकला नहीं, लेकिन सूरज निकलने से पहले काफी रोशनी फैल जाती है। बस हजरत फरमाते हैं इसी तरह रमजानुल मुबारक की बरकात, रमजानुल मुबारक की बरकतें 15 शाबान की रात से शुरू हो जाती है, जैसे रोशनी निकल जाती है ना, अभी तो रमजान आए नहीं, जैसे वहां सूरज निकला नहीं, हमारा रमजान का सूरज निकले उससे पहले ही रोशनी शुरू हो जाती है उनमें से। अब देखो 15 शाबान से आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है, यहां तक कि रमजानुल मुबारक के 2-4 दिन पहले, अभी तो 5 दिन बाकी है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और हम काउंट कर ले मंडे, 5 दिन गिन ले रमजान शुरू होने के, तो 2-4 दिन पहले ये अनवारात ऐसे ही होते हैं गोया के रमजानुल मुबारक के ही अनवार शुरू हो गए, ऐसा लगता है कि अभी रमजान शुरू हो गई है, दिल में भी फिक्र, घर में भी फिक्र जी, तो ये सारी फिक्रें, खास करके इफ्तारी की फिक्र, समोसे पकौड़े की फिक्र, कुरान की फिक्र, रोजों की फिक्र, बहुत कुछ जल्दी जल्दी कर लो, अभी रोजे रखने हैं, रमजान आ रही है, उससे पहले सब काम निपटा दे। जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो ये नूर का सूरज, नूर नहीं अनवार, नूरों का सूरज, रमजान के अंदर में जितना नूर होता है ना, वो सब का सूरज अपने रुख तावा के साथ बहुत ज्यादा रोशनी के साथ जलवा गर हो जाता है, निकलता है कि अब रमजान शुरू हो गई और ईमान वालों के दिलों को मुनव्वर कर देता है। कुछ डिफरेंट ही फील हो जाती है, रमजान शुरू होती है इंसान के दिल में डिफरेंट फीलिंग होती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत कसरत के साथ रोजा रखते थे। इसलिए अब ये कुछ दिन बाकी है और इसी आखिरी शाबान की जुमा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान का खुतबा बयान फरमाया, उसमें रमजान के फजाइल बयान फरमाए, रमजान में गुनाह न करने के बारे में बयान फरमाया, फिर रोजे के बारे में बयान फरमाया कि रोजा ढाल है, और फिर जैसे यहां बुखारी मुस्लिम की रिवायत बयान फरमाई कि रोजे की हालत में गाली गलोच न करो, गीबतें न करो, बकवास न करो, कोई तुमसे लड़े तो उसको बतला दो मेरा रोजा है, बुरे काम न करो। अब जब रमजान का महीना आ रहा है, सहाबा किराम अल्लाह अकबर, जब रमजान का महीना आता है तो सहाबा किराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल में तीन बातों का इजाफा हो जाता था। वॉज इंक्रीज इन द आमाल ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कंपेनियंस अबाउट थ्री थिंग्स। नंबर वन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इबादत शुरू कर देते थे। इबादत तो आप फरमाते थे लेकिन रमजान में और ज्यादा, हालांकि हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान के अलावा इबादत के बारे में हदीस में जो लफ्ज है कि इतनी इतनी लंबी नमाज रात में पढ़ते थे, हत्ता यतवर्रमत कदमाऊ, यहां तक कि आपके दोनों पैर सोजन हो जाते थे, सोलन हो जाते थे, इतनी तो गैर रमजान में आपके बारे में है। तो रमजान मुबारक में आपकी इबादत और बढ़ जाती थी, कितनी अल्लाह को पता है। ये हमें भी चाहिए कि रमजान का महीना शुरू हो तो हमारी इबादतें बढ़ जाए, हमारी तस्बीहात बढ़ जाए, हमारा इस्तिगफार बढ़ जाए, हमारा दुरूद शरीफ बढ़ जाए, हमारी दुआएं बढ़ जाए, हमारा कुरान तिलावत कुरान की तिलावत करना बढ़ जाए, हमारे नवाफिल बढ़ जाए, हमारे नवाफिल लंबे होने शुरू हो जाए, सजदे लंबे होने शुरू हो जाए, रुकू लंबे होने शुरू हो जाए, और जो और गैर रमजान में जो अव्वा भी नहीं पढ़ता वो मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ लें, इसी तरह इशराक पढ़ें, इशराक नहीं तो कम से कम 4 तक की नमाज पढ़ लें, रमजान में हज उम्रे का सवाब मिलेगा, और तहरी के लिए उठे तो 4-5, 4-6 रकातें तहज्जुद की पढ़ लें, ये नवाफिल भी बढ़ा दें, इबादत ज्यादा कर लें, अपने हाथ में तस्बीह रखें, जितना हो सके कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें, जितना हो सके इस्तिगफार करें, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ें, ये अपनी इबादत को बढ़ा दें नंबर एक, ताकि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और सहाबाए किराम की तरह अपनी रमजान गुजारें। यह है रमजान की तैयारी की बातें कि क्या करना है। फिर 10 रमजान पूरी हो जाए फिर कहे कि आप इबादत करो, इसलिए रमजान से पहले ही मैंने कहा कि ऐसी बातें हो जाए कि रमजान के फजाइल भी सामने आ जाए, ताकि इंसान को शौक पैदा हो पहले ही दिन से इबादत का। नंबर दो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते थे, अपने हाथों को बहुत खोल देते थे, दिल खोल कर सदका निकालते थे। जकात तो है ही, जकात तो देनी ही देनी है, वो तो फर्ज नमाज की तरह फर्ज है, उसके न देने पर तो वईद है, नफली सदकात की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सदकात को बढ़ाते थे, खूब बढ़ाते थे रोजाना। हम कुछ ना कुछ निकाल दे सदका, समझ में आई बात? ये दिल गुर्दे का काम है कि सदका नफली निकाले। भाई चलो कोई आ गया, सुबह में एक पाउंड, दोपहर में एक पाउंड, शाम में तीन पाउंड, दो एक पाउंड, तीन पाउंड दिन के निकाल दे, या कम से कम दिन में एक पाउंड निकाल करके, तो भी रमजान में 30 पाउंड हो जाते हैं। रोजाना निकाले ताकि रोजाने की फजीलत हो। अब कहेंगे आखिर में निकाल दूंगा, तो आखिर में मिलेगा, शुरू से कुछ नहीं मिलेगा, है ना? कैश सवाब मिलना चाहते हो, लेना चाहते हो तो कैश निकाल दो। भाई इस नफली सदका में निकालता हूं, 5-5 पाउंड निकालूंगा, कितना हो जाए, 150 पाउंड हो जाएंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खूब देते थे, हालांकि उनके पास कुछ नहीं, है ना? जो आज लोगों के पास माल अगर ऐसा होता तो वो क्या क्या देते जी, क्या क्या देते वो। लेकिन फिर भी जो भी आता था वो निकालते थे। क्यों? जो सदका जाता है वो वापस जरूर कुछ लेकर आता है। जो सदका जाता है वो एक तो सवाब तो है ही रमजान में 70 गुना, लेकिन वो पैसा जो दिया है जितना, वो 10 गुना बढ़कर आने वाला है। कुरान इस पर शाहिद है। कुरान कह रहा है कि आदमी की मौत नहीं आएगी कि अल्लाह उसको उसका दुनिया में ही बदला देगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है सवाब और जो भी है, लेकिन दुनिया में भी। बल्कि रमजान के सदकात अगर कबूल हो गए तो रमजान की फजीलत, और साथ साथ में इंतकाल के वक्त मौत ईमान पर आती है। हाँ, ईमान पर। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्सदकतु तुतफियो गदब रब, अस्सदकतु तुतफियो गदब रब वो तदफो मीटत सु। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करेगा, और रमजान में सुभान अल्लाह, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो गया, रहमत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, तो क्या अल्लाह देगा हमें अंदाजा नहीं कर सकते हैं। फरिश्ते दुआएं करते हैं, सारी मखलूक दुआएं करती है रोजेदारों के लिए, साथ साथ में बुरी मौत से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा काम यह था कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खूब खर्च करते थे, खूब खर्च करते थे, अपने हाथों को खोल देते थे, खुले दिल के साथ सदका और खैरात करते थे। ये नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गिरियाजारी, दुआएं, मुनाजात, अल्लाह से मांगना, वो रमजान में भर जाता था। दुआएं तो हर वक्त करते हैं, लेकिन रमजान में लंबी दुआएं, जब भी मौका मिला हाथ उठा करके दुआ शुरू, जब भी मौका मिला हाथ उठा करके दुआ शुरू, हर नमाजों के बाद, हर नवाफिल के बाद, तहज्जुद के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद, हर वक्त हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ। क्यों? रमजान का महीना है, जहन्नम के दरवाजे बंद है, शैतान बंद है, रहमत के अनवारात और नूर उतर रहा है। ऐसे वक्त में हम दुआ करेंगे, हमारी दुआएं। ये 3 बातें रमजानुल मुबारक के अंदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर जाते थे, इबादत, सदकात और मुनाजात। इबादत ऑफ अल्लाह, चैरिटी एंड क्राइंग दुआज इन फ्रंट ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। हम रमजानुल मुबारक में इसका खास तौर से एहतमाम करें, ये 3 चीजें, और इबादत के जरिए से अपने जिस्म को ठकाएं। हमारे जिस्म दुनिया के काम काज के लिए ठगते हैं, काम से आता है तो क्या ठग गया आज, है ना, थोड़ा सा काम कर लिया ठग गया, 4-5 घंटे घर का गार्डन का काम किया ठग गया, दुकान का काम किया ठग गया जी। तो हम अपने जिस्म को ठकाते हैं दुनिया के काम के लिए। जिंदगी में कोई ऐसा भी वक्त तो आए कि अल्लाह की इबादत के लिए अपने जिस्म को ठकाए, ऐसा भी तो कोई टाइम हो ताकि हम अल्लाह से कह सके कि अल्लाह हमने रमजान में अपने जिस्म को ठकाया तेरी इबादत के लिए। सोते तो पूरा साल है और सोते ही रहते हैं, रमजान में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, रमजान में हमारा सोना क्या है एक्स्ट्रा हो जाता है ना, क्यों, रोजेदार है भाई, बड़ा कमाल कर दिया हमने, रोजा रख के इतना बड़ा कमाल कि और दिनों में 5 घंटे रमजान में 10 घंटे ताकि रोजा हमारा कबूल हो जाए, सोना एक्स्ट्रा कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में इबादत को एक्स्ट्रा करते थे, दुआओं को एक्स्ट्रा, हम सोने को एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सो जाएंगे। हाँ यही तो चीज है, इसलिए कोई ऐसा भी तो वक्त आए कि अल्लाह की इबादत में अपने जिस्म को ठकाएं, कोई ऐसा भी तो वक्त आए कि हमारी आंखें नींद को तरस जाएं। अरे यार बहुत नींद आ रही है, क्यों, आज तो मैं जागा हूं तो इबादत की है नींद। हम अपने आप को समझाएं कि अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए जागोगे, अल्लाह को राजी करने के लिए जागोगे, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने आप को जगाओगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कयामत के दिन इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार नसीब होगा, इन्हीं आंखों से अल्लाह को देखना नसीब होगा। अगर हम अपनी आंखों को और अपने बदन को अल्लाह की इबादत के लिए ठकाएं, और अगर दुनिया में हमने अपनी नींद को यानी अपने नींद को कम किया अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर ये आंखें आज जागेगी अल्लाह की रजा के लिए तो कल कब्र के अंदर में मीठी नींद सोएगी, कब्र के अंदर में आराम की नींद सोएगी। मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, शायर क्या कहता है, मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, नींद भरकर वही सोया जो के जागा होगा, नींद भरकर वही सोया जो जागा होगा। याद रखो दुनिया में अपने आप को जगाया तो फिर कब्र में नींद आएगी, नहीं तो फिर अजाब ही अजाब, अल्लाह हमारी हिफाजत। अगर दुनिया में अपने जिस्म को ठकाया, नींद जागा रहा दुनिया में अल्लाह के लिए, तो फिर कयामत में अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। ये सोने का महीना आ रहा है, कैसा महीना आ रहा है, सोने का महीना आ रहा, रमजान आ रहा है, सोने का महीना आ रहा, नहीं नहीं सोने का नहीं, ये जागने का महीना आ रहा है। हम अपने आराम में कमी पैदा कर ले, यूं समझे ये मशक्कत उठाने का महीना है, ये अल्लाह की रजा के लिए मशक्कत उठाने का महीना है। अरे भाई नाज करना चाहिए कि मैं गहरे रमजान में कुल्हू अल्लाह अहद में 100 बार नहीं पढ़ा, इस रमजान में मैं 30 दिन में 30,000 बार पढ़ूंगा, कितने कुरान का सवाब मिलेगा, 3 बार पढ़ो एक कुरान, 30,000 बार पढ़े तो कितने कुरान, आदमी कमा जाता है सवाब, आई बात समझ। हाँ हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दुआ है, कल ही मैंने हदीस की किताब में देखी, मैं उसके अल्फाज भी देख रहा था कि इस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन का कोई कलाम है, लेकिन सही रिवायत है सारे मुहद्दिसीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में एक दुआ 4 बार पढ़ते थे और शाम में 4 बार पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असबहतु उशहिदुका واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبده ورسوله पता है, एक बार पढ़ता है आदमी ये दुआ एक बार, तो उसका कौटर बदन जहन्नम से फ्री हो जाता है। दो बार पढ़ता है तो आधा बदन जहन्नम से फ्री हो जाता है। तीन बार पढ़ता है तो थ्री क्वार्टर बदन जहन्नम से फ्री है, और चार बार पढ़े वो पूरा जहन्नम से फ्री हो जाता है। ऐसी दुआएं पढ़नी चाहिए जो हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, सही है, जिसमें किसी का कलाम नहीं है जी, चाहे अरब के उलमा हो या अजम के उलमा हो, मुहद्दिसीन सब में हदीस हसन सही है। اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك وان محمدا عبدك ورسولك صبح میں پڑھ لے انی اصبحت، شام میں پڑھے انی امسیت، شام امسے میں نے شام کی ہے، اشهدك وہ ملائکہ وہ جمیع خلق، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں، فرشتے ساری مخلوق اللہ تیرے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، وحدک لا شریک تیرے سوا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایسی دعائیں ہمیں لکھ لینی چاہیے اپنی لینگویج میں، اور اس کو پڑھ لے چار بار صبح میں، چار بار شام میں، بدن عذاب ہے اور چار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں پڑھنی چاہیے، اب رمضان میں کوئی پڑھے تو سبحان اللہ، ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، اللہ سمجھ میں۔ اس لیے یہ ٹھکانے کا مہینہ ہے۔ ہاں بھائی، آج تو لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں نا مجلسوں میں، کہاں بیٹھتے ہیں، ان کو کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیا اچھی اچھی چیزیں، مختصر ہو لیکن بہت جامع ہو، مختصر وظیفہ ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ ملتا ہے جنت کی کیاریوں میں بیٹھنے سے، جی یعنی مدرسوں میں، علماء کی مدرس میں بیٹھنے سے یہ نعمتیں ملتی ہیں، کوئی گھر پر دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ اچھی اچھی مدرسوں میں ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں، یہ جنت، یہ موٹی ہے، موٹی اس کو کہتے ہیں مختصر مختصر پڑھے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سات بار پڑھ لے صبح میں شام میں، اللہ ہر چیز سے تیری حفاظت کرے گا، اللہ ہر اعتبار سے تیری مدد کرے گا۔ بہت قیمتی قیمتی وظیفے ہیں، ان کو پڑھنے چاہیے اپنی زبان میں لکھ کر کے، اس کو اپنے جیب میں یا اپنے قرآن میں رکھنے چاہیے کہ بھائی مجھے یاسین شریف پڑھنے کے بعد یہ دعائیں صبح پڑھنی ہے۔ کوئی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح میں ایک بار پڑھ لو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بحد من خلق فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ فرمایا جس نے صبح میں ایک بار پڑھ لیا یہ دعا، صبح میں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، اس نے پورے دین کا اللہ کا شکر ادا کر دیا، پورے دین کا۔ ایسی دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس کے ثواب بہت زیادہ ہے، تو آپ دیکھو یہ سیزن آ رہی ہے ہمارے لیے، تو کیا ہے، سیزن ہے، سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، مشقت اٹھانے کا مہینہ آ رہا ہے، جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آتے ہیں سال میں ایک بار، کرسمس ٹائم آتا ہے، پھر اور ٹائم ہوتا ہے، ایسٹر ٹائم ہے، جس شخص کا جس کا بھی سیزن آ جائے وہ کتنی محنت کرتا ہے تاکہ میرا مال نکل جائے، میرا مال نکل جائے، کبھی فور سیل لگا دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اور وہ اپنے دوسری مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ میں ذرا کما لوں، میں پیسے لے لوں، میں کچھ کما لوں۔ وہ دوسروں سے معذرت کرتا ہے، بھائی آئی ول سی یو آفٹر کرسمس، یہ میرے بیزی ڈیز ہے، میرا سیزن ہے، اس کو میں ضائع کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں زیادہ ٹائم آپ کے لیے فارغ ابھی نہیں کر سکتا، بعد میں فون کرنا، بیزی ہوں میں، بیزی ہوں، بیزی ہوں، کہتے ہیں نا बल्कि वो इंसान अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करता है, खाना पीना भी आगे पीछे कर लेता है, बिजी है, दुकान बहुत बिजी है। देख लो जितने भी सुपरमार्केट वाले हैं, वो अपना खाना पीना भी आज अभी तो तिल पर मुझे टाइम नहीं है, बस खाना बाद में, कभी वो तिल पर बैठे बैठे ही थोड़ा सा खा लेता है, बिजी टाइम है भाई। हर वक्त तो उसको ये गम होता है कि मैं किस तरह इस सीजन में कमा लूं, सीजन से कितना फायदा उठा सकता हूं, मैं उठा लूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं। वो सुस्त है, क्यों? उसको पता है जस्ट फॉर फ्यू डेज, उसको पता है ये सीजन है फ्यू डेज, ये थोड़े दिन की तकलीफ है, उसके बाद तो फिर आराम कर लेंगे। ओबे ना, जब न्यू ईयर शुरू होता है लोग आराम करते हैं, भाई सीजन में कमा लिया जो कमाना था कमा लिया। इसी तरह रमजानुल मुबारक नेकियों कमाने का सीजन है। हां, नेकियों का सीजन आ रहा है, वो दुनिया की है, ये दुनिया और आखिरत कबर सबकी है। जो लोग अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह जल्ल शानहू की मैयत के हसूल करने के लिए, हासिल के लिए बेकरार रहते हैं, उनके लिए ये महीना एक बहुत जबरदस्त सीजन का है। उन्हें चाहिए कि रोजा रखें, तो उनका रोजा महज खाना पीना छोड़ना नहीं है, बल्कि रोजेदार की आंखें भी रोजा रखें, उसकी जबान भी रोजा रखे, उसके कान भी रोजा रखे, इसकी शर्मगाहें भी रोजा रखे, इसका दिल दिमाग भी रोजा रखे, इसकी जबान भी रोजा रखे। इसी तरह हम सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम रोजेदार बन जाएंगे, तो इफ्तार के वक्त हाथ फैलाओगे, अल्लाह रहमत का दरिया खोल देगा कि मेरा बंदा पूरा दिन ऐसा रोजा रखा है, न कानों से गुनाह किया, न आंखों से गुनाह किया, न इसने दिमाग से कोई गुनाह किया, न जबान से गीबत की, न बकवास किया, न गाली दी, बल्कि इताअत करता रहा, इबादत करता रहा। अब ये हाथ फैलाता है, मेरा काम है इसकी दुआओं को कबूल कर लो। ये रमजान की बरकत है। रमजानुल मुबारक का महीना अजीब बरकात के नुजूल का महीना है, अजीब बहुत है। ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक बरकतों का दरवाजा रमजान में खोल देता है, रमजान में बरकतों का दरवाजा खुल जाता है। हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रमजानुल मुबारक आने से पहले जन्नत को खुशबू की धुनी दी जाती है। अरे मेहमान आने से पहले घर के अंदर में स्प्रे करते हैं ना, घर के अंदर में हम खुशबू करते हैं, कभी ये लगा दिया, कभी वो लगा दिया, ताकि मेहमान इस घर में ठीक खुशबू है। अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदों का सीजन रोजा रखने का आ रहा है, उससे पहले ही पूरी जन्नत को खुशबू दी जा रही है। हदीस में जन्नत को, हालांकि जन्नत है ही खुशबू वाली, उसको खुशबू देने की जरूरत नहीं, लेकिन बंदों के रोजों के वेलकम में अल्लाह अपनी जन्नत को सजा रहा है, जन्नत को ईमान वालों के लिए सजाया जाता है। जब पहली रमजान का वक्त आता है, ये पहली रमजान यानी फर्स्ट रोजा, जब मंडे की रात को इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम तरावी पढ़ेंगे, मंडे की रात को शाम में हम तरावी पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। गोया लास्ट ईयर शव्वाल, पहली शव्वाल से लेकर अभी रमजान के यानी 30 या 29 शाबान तक रमजान को सजाया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है रमजान में रोजे रखने वालों के लिए, जन्नत को सजाया जाता है पूरा साल। अब जैसे ही चांद नजर आ गया, रोजा शुरू, तरावी शुरू, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, आज के दिन जन्नत के दरवाजे ईमान वालों के लिए खोल दो। गोया ईमान वालों के लिए जन्नत इस तरह सजाई जाती है जिसे दुल्हा के खातिर दुल्हन सजाई जाती है। हम दुल्हे हैं जन्नत के। अल्लाह ताला जन्नत को सजाता है अपने बंदों के लिए। ये तो हदीस है। इस हदीस को आप पढ़ोगे फजाइल रमजान में, मौलाना जकरिया साहब ने भी नकल फरमाई। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआएं मांगा करते थे। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह, शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। ये दुआ क्यों मांगते थे? क्योंकि रमजान बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन है, बहुत ही नेकी कमाने की, जागने की मशक्कत, अपने बदन को मशक्कत में डालने की सीजन आ रही है। सोए पूरा साल सोए, रमजान में थोड़ा ज्यादा जाग ले। लेकिन हमारा तो उल्टा ही हो गया, और दिनों में कम सोते हैं, रमजान में ज्यादा सोते हैं। अल्लाह के नबी और दिनों में नहीं सोते थे, कम सोते थे, रमजान में बिल्कुल नहीं सोते थे, लेकिन ज्यादा इबादत करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में तीन काम किया करते थे। इस महीने की बरकतों का पता लगाओ, इतनी ज्यादा है कि जब कोई आदमी रोजा रखता है तो उस रोजेदार की बख्शिश के लिए हवाओं में उड़ने वाले परिंदे, सुराखों में बिलों में चूंटियों को, समंदर में मछलियों को अल्लाह हुक्म देता है कि रोजेदार के लिए दुआ करो। लेकिन रोजा कैसा हो? मैंने बताया, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज का रोजा हो, आंखों से भी गुनाह ना हो, जबान से भी नहीं, कान से भी नहीं, दिमाग और दिल से भी नहीं, हाथ से भी नहीं, पैर से भी नहीं, और पेट से भी नहीं, शर्मगाह से भी नहीं। ऐसा रोजा अगर रखेंगे तो फिर इनके लिए ये सारी चीजें दुआएं करती है। वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आदमी रमजान में गीबत करता रहा, गुनाह करता रहा, उसके रोजे रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, वो चाहे भूखा प्यासा रहे। ये अल्लाह के नबी के नबी से मुझे उसके रोजे की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आदत पड़ गई गीबत के बगैर चलता नहीं, बकवास के बगैर चलता नहीं, एक्स्ट्रा टॉक के बगैर, विदाउट अननेसेसरी टॉक के बगैर चलता नहीं है, तो उनके लिए तो बेस्ट यही है कि रमजान को सोने का महीना बना ले। सही कह रहा हूं, न तो इधर का रहा न तो इधर का रहा, रमजान भी चला गया और रोजे का सवाब भी नहीं, मगफिरत भी नहीं। तो जो जबान हमारी और जो आंख और जो कान और दिनों में गुनाहों में, बकवास में, गीबत में, बोहतान में खर्च होते थे, उन्हीं चीजों को अब इबादत में लगा दो तो फिर तकवा वाली जिंदगी मिलेगी। अल्लाह क्या कह रहा है? कुतिब अलैकुम, इस बाब में इमाम नबी क्या फरमाते हैं? कुतिब अलैकुम सियामु कमा कुतिब अलल लदीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुमसे पहले लोगों के लिए हमने क्या किया है? तुमसे पहले लोगों पर हमने रोजा फर्ज किया है। ऐसा क्यों कहा अल्लाह पाक ने? कहीं बंदा ये ना समझे कि यार हम पर क्यों बोझ डाला है, तो अल्लाह ने पहले से कह दिया तुझ पर कोई बोझ नहीं। अल्लाह को भूखा प्यासा रखना मकसूद नहीं है, तुमसे पहले को कोई रोजा रखा था, फर्ज किया था, ताकि तू ये ना समझे कि मेरे लिए बोझ है। ये खुशी से रखे, और तकवे का मकसद जो बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजा रखेगा तो अल्लाह तुझे तकवा देगा। तकवा का माना है अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। और वजअलना, कह रहे हैं अल्लाह पाक ने, उइद्दत लिलमुत्तकीन, हमने जन्नत को तैयार कर रखी है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी लोगों को अल्लाह के वली कहा जाता है। दो सिफत है वलियों की, वली बनने की दो सिफत है जी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला, सुन लो, खबरदार सुन लो, अला इन औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनको आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा और दुनिया की कोई फिक्र नहीं होगी। वला हुम यहज़नून, अपने गम, दुनिया छोड़ने का कोई गम नहीं होगा और कब्र और आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा। आराम से जिंदगी बरजक की और कयामत की, हशर की गुजारेंगे। वो कौन है? आगे अल्लाह कह रहे अल्लदीना, वो लोग हैं आमनु जो ईमान लाए, कानू यत्तकून, और क्या है तकवा वाली जिंदगी गुजारा। अगर तकवा वाली वली बनना हो तो आदमी रमजान में ऐसे रोजे रखे अल्लाह उसको वली बना, अल्लाह उसको वली को मां के पेट से पैदा नहीं होता। वली इस तरह बनता है जिसकी दो सिफत कुरान ने बयान फरमाई कि अल्लाह के वली वो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो तकवा वाले होते हैं और ईमान वाले। अल्लाह ने ईमान तो दिया है, अब महीना आ रहा है तकवा वाला, तकवा हासिल करने का महीना आ रहा है। अगर रोजे रखे, खूब इबादतें की और जुल्म नहीं किया किसी पर, किसी की बुराई नहीं की, किसी की गीबत नहीं की, किसी के पैसे नहीं लिए, किसी के कोई बुरा भला नहीं कहा, अच्छी तरह अल्लाह को राजी करने के लिए अपना ज्यादा टाइम इबादत में, सदकात में और दुआओं में गुजार दिया, इंशाल्लाह तकवा मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें आने वाले महीने की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। इंशाल्लाह बकिया फजीलतें रमज़ान की नेक्स्ट वीक वेनसडे को बयान करेंगे इंशाल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہم پر رحم فرما يا الله ہم پر کرم فرما يا الله مصیبتوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما يا الله شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما رمضان کا مہینہ خیر اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ آنے والے مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اس درس کو قبول فرما یہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کا سننا قبول فرما سب کا سننا قبول فرما سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ سارے سننے والوں کی مغفرت فرما سارے سننے والوں کی مغفرت فرما سارے سننے والوں کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین دشمنوں سے حاسدین سے ہماری حفاظت فرما دشمنوں سے حاسدین سے ہماری حفاظت فرما دین کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم دشمنوں کو ختم فرما اللہ دشمنوں کو ختم فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا حافظ قرآن بنا خادم قرآن بنا اے اللہ عالم قرآن بنا الہ العالمین عامل قرآن بنا یا اللہ آنے والے مہینے میں قرآن کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما عبادتوں کی توفیق نصیب فرما ذکر کی توفیق نصیب فرما یا اللہ آرام کے ساتھ عفوافیت کے ساتھ روزے رکھے ایسی صحت اور عافیت نصیب فرما ایسی صحت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں یہ اسپیکر کے ذریعے سے سن رہے ہیں مکسر کے ذریعے سے سن رہے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے سب کے سننے کو قبول فرما جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما گھروں میں سکون نصیب فرما دلوں میں سکون نصیب فرما اے اللہ آپس میں محبت مودت نصیب فرما اللہ جھگڑوں کو ختم فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارے حصہ نصیب فرما اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باتوں کی برکت سے ہمارے اللہ ان تمام شرور سے حفاظت فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین رحمۃ